اللہ تعالیٰ نے جو کام و فراد پر مجھے سے بھی کوئی نائب فرمائش روکی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے اپنے دور میں دین کی وہ تعبیرات پیش کرتے ہیں اور ایسے دلائل دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس دور میں اور جب تک ان کی تجدید کا اثر باقی رہے لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور اللہ کے ہونے کا یقین حاصل ہوتا رہے. حضرت شاہ ولی اللہ محمد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب عبداللہ الغالبہ کے چھٹے باب میں عنوان یہ مان رہے ہیں یا اس بات کو شروع کر رہے ہیں کہ تکلیف کا سر کیا ہے. چنانچہ انہوں نے اس کا عنوان رکھا ہے صرف تکلیف. تکلیف کا راز سر کیا ہے؟ سر کا لفظ جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا, استعمال ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں کہ جاگی نمازیں اور فطری نمازیں, یعنی وہ نمازیں جن میں اونچی آواز سے قرات کی جائے, مغرب عشاء فجر جمعہ عیدین سب میں اونچی آواز قرات کی جاتی ہے, اور فطری نمازیں جیسے ظہر وتر. اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ اثرات کا علم اللہ کو ہے, یعنی صرف چھپی ہوئی باتیں راز بھید کہ راز کیا ہے, اس کا بھید کیا ہے, اس میں کیا چیز چھپی ہوئی ہے, یہ تو ہے سر. اور تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس چیز پر مجبور کرنا جو اس کی طبع کے خلاف ہے. اور تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کو اس چیز پر آمادہ کرنا جو اس کے نفس کی خواہش کے برعکس ہے. تکلیف ہمارے ہاں دکھ کے معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے, ناگواری کے معنی میں, پریشانی کے معنی میں. آدمی کو تکلیف پہنچی, یا اللہ تکلیفوں سے نجات دے, تمہیں کیا تکلیف ہے, یہ سب جگہ معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں ناگوار گزری. गर्मियों में ठंडे पानी से नहाना तकलीफ नहीं है, दिल खुश होता है। और सर्दियों में गर्म पानी से नहाना तकलीफ नहीं है, इंसान को इत्मीनान मिलता है। और इसके बरक्स अगर कर दिया जाए तो इंसान तकलीफ में मुब्तला हो जाता है कि गर्मियों में गर्म पानी से ना आए और सर्दियों में ठंडे से ना आए। और तकलीफ इसे लफ्ज बनाए मुकल्लफ, और एक लफ्ज है मुकल्लफ, मुकल्लफ जिसको तकलीफ दी जाए, जिसको पाबंद बनाया जाए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, और अल्लाह किसी शख्स को मुकल्लफ नहीं बनाता मगर उतना ही जितना उस आदमी के बस में है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह किसी भी इंसान के नफ्स को, उसकी जान को उसकी ख्वाहिश के खिलाफ अमल पर मजबूर नहीं करता मगर उतनी ज़हमत देता है जितना आदमी उठाते। मुंतजर जिसका इंतजार किया जाए, मुबारक जिसको बरकत दी जाए, मुकल्लफ जिसको तकलीफ दी जाए पाबंद किया जाए, मुंतजर जो इंतजार करता है। मैं आपका मुंतजर था, यानी आपका इंतजार कर रहा था। अरे आप तो मुंतजर हैं, यानी वो हैं जिनका इंतजार किया जा रहा था। आप बड़े मुबारक हैं, यानी वो आदमी है जिसे बरकत दी गई। और अल्लाह मुबारक है, बरकत देने वाला है। मुकल्लफ इंसान जिसे तकलीफ दी गई पाबंद बनाया गया, और मुकल्लफ नाम की देर के साथ अल्लाह जो के इंसानों को लाई करने ऐसी अल्लाह पाबंदी देता है जिसको इंसान गवारा कर सके, इंसान की हद से पार बात नहीं होती। अल्लाह अगर ये कर देता कि इंसान अपने से सौ गुना ज्यादा बदल उठाए और इंसान उठा नहीं सकता, तो ये अल्लाह तकलीफ ऐसी चीज की दे रहा था जो इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह कहता है मैंने जितनी शरीयत नाज़िल की है उसका तुम्हें मुकल्लफ पाबंद बनाया है, वो सब की सब ऐसी है जो तुम कर सकते। सुस्ती से ना करो, या नाफरमानी से ना करो, या बगावत की वजह से ना करो, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी आदमी के लिए हिम्मत करे तो मुश्किल नहीं है कि रात को नींद पूरी करके फजर जमात से पढ़े। कोई आदमी नमाज पढ़ना चाहे, कोई मुश्किल नहीं है कि वो वुजू करे और आगे नमाज पढ़े। हज करना चाहे तो हज कराए, ज़कात देनी हो दे दे। अल्लाह बस उतना ही पाबंद बनाता है जितनी पाबंदी किसी इंसान के बस में होती है, अल्लाह उससे बढ़कर पाबंद नहीं बनाता। और लोगों ने जंगलों में रहना, मखलू के खुदा से अटकट कर रहना खुद शुरू कर दिया था। इन्होंने खुद बस ये बात की जाती थी अपना आ रही, हमने तो ईसाइयों को ये नहीं कहा था कि दुनिया छोड़ के जंगलों में जाके आबाद हो जाए। लेकिन जब उन्होंने अपने ऊपर ये पाबंदियां लगाई कि हम ऐसा जंगलात में रहेंगे, अच्छे खाने नहीं खाएंगे, अच्छे लिबास नहीं पहनेंगे, राहिब और राहबाएं बनकर रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, अल्लाह ने कहा हमारा हुआ हक्का रियायत दिया, तो जो इससे वादा किया था नालायक उसकी भी पाबंदी को नहीं कर सके। कैसे पाबंदी करते, इसलिए कि इंसान की फितरत के खिलाफ था, अल्लाह ने उसको मुकल्लफ इंसान को बनाया नहीं था। तो फिर तकलीफ का मतलब ये हुआ अल्लाह ने इंसान को जो पाबंद बनाया है इसका भेद और राज क्या असल में जब बात यहां से शुरू होती है जो आदमी पढ़े लिखे लोगों में सवाल उठता है लोगों की जिंदगी है एक कथा है उसको कोई परवाह नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ता है क्यों नहीं है दोनों तरह के लोग होते हैं नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़नी है ऐसे भी हैं कि सार अजीब पत्थर तोड़ने हैं और आजान हुई और आकर नमाज पढ़ ली उसने ऊपर भर के नहीं सोचा कि नमाज अल्लाह ने फर्ज क्यों करा दी उसने कहा इबादत है रब करनी है बाप दादे करते थे हम भी करते इसलिए इसके मुकाबले जरा सवाल रहे बुरा आदमी है वो कहते हैं जिंदा ने नमाज की पाबंदी क्यों जरूरी करा दी है फिर खुद का राज वो दरियाफ्त करता है नमाज पढ़ता है एक उससे भी ज्यादा फलसफियाना सोच का मालिक है वो कहता है खुदा को इस कायनात में और कोई नहीं मिला था जिस पे हज ज़कात रोजा ये चीजें फर्ज होती आखिर मैं ही क्यों इंसान ही क्यों हमें अल्लाह ने पाबंद क्यों बनाया है जितना जितना इल शऊर इदराक का दर्जा बढ़ता चला जाता है उतना उतना इंसान के ज़हन में सवाल पैदा होते हैं फर्क यह है हमारे जमाने में और पिछले जमाने के पढ़े लिखे मुसलमानों में कि उनमें ये सवाल पैदा होते थे लोग जाते थे इल्म हासिल करते थे और अहले इल्म की मजलिस में जाते थे तो उलमा खुद ऐसे सवाल अपने पास से पैदा करके जवाब देते थे ये किसी जाहिल ने नहीं पूछा था कि लगाना क्या कोई ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद ना उठा सके कि किसी पत्थर पूछने वाले के दिमाग में कितना सवाल उठा था कि क्या इस कायनात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दूसरा आदमी पैदा किया जा सकता है या नहीं कितने पढ़े लिखे लोगों के सवाल थे जिन्होंने फलसफा पढ़ा मंतिक पढ़ी रियाजी पढ़ी ये सब चीजें पढ़ी और उनके पढ़ने के बाद उनका इदराक और शऊर इतना बुलंद हो गया कि उनके ज़हन में ये सवाल पैदा हुए लेकिन उस जमाने में मुसलमान ऐसे थे जो उलमा खुद ही ये सवाल पैदा करते थे उसके जवाब आते थे इमाम गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह सवाल बड़े पैदा करते हैं फिर उसका जवाब भी देते हैं ये अलग बात है कि आदमी सवाल पैदा करते हैं और जवाब उनका कुछ सौ सफे के बाद कहीं आएगा अब आदमी सौ सफे पढ़ता नहीं तो आदमी कहता है यार इस सवाल का जवाब आकर कब आएगा तो मुहक्किकीन ने कहा कि राजी के इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह के सवाल नकद होते हैं और जवाब उधार पे होता है पता नहीं देगा या नहीं देगा और ऐसे जो सवाल पैदा करते थे साथ ही जवाब भी देते थे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को देखे एक से एक जबरदस्त सवाल और उसका जवाब इब्ने रुश्द को देखे फलासफा है लेकिन उस जमाने के मुसलमान हुए और अपने बुनियादी फर्क ये था कि वो इल्म को फैलाते थे और लोगों को ऊपर की सतह की तरफ लाते थे और लोगों में शौक था इल्म का पढ़ने लिखने का तो लोग ऐसी मजालिस में जाते थे पढ़ते लिखते थे और वो अपने शऊर को इदराक को इल्म को बुलंद करते थे इतना इल्म था उन लोगों की मजलिस में कि मुहद्दिसीन ने बड़े बड़े उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हैं वो कहते थे हम इमाम बुखारी पर रहमतुल्लाह की मजलिस पे जाते थे वो इल्म की बात बयान कर रहे होते थे हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई कि हम बैठ के सुने हम चुपचाप के कोने में खड़े होकर सुनते रहते थे कि हजरत इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमा क्या रहे वो इतना बुलंद इल्म होता और अब के मुसलमानों में अपने फर्क ये है कि लोग बजाय किसके ऊपर की तरफ भूखे और इल्म को हासिल करें वो इल्म में कोई नई बात सुन ले तो जाते हैं कि ये भी हमारी सतह पर आ जाए और जाए नाना बातें करे किससे कहानियां सुनाए खूबसूरत आवाज हो ये चीजें हो हम अपने इल्म में इजाफा ना करें उसका कसूर यह है कि उसने पढ़ा लिखा क्यों है उसको नीचे लाओ हर आदमी जिसका इल्मी को दो काट उससे बुलंद हो हम अपना कद बुलंद करके पहुंच सके ना पहुंच सके इसके पाँव जरूर काट हो सके ये हमारे ना बोना इस वजह से अहले इल्म की तरक्की या मुसलमानों की तरक्की रुक गई
उन्होंने इसको इस रेतवा से जांचा नहीं शामिलता रेतवा रेतवा इस बारे में ऐसी सवाल उठाते हैं अब सवाल ये उठा कि दुख तकलीफ इंसान की बोलना ने पाबंद क्यों बनाया है इंसान पूरा क्या कमा पर अमल क्यों करे बाकी जान सुनना मिल सके जिन्ना हैं खरीदते हैं नबातात हैं जमातात हैं ये सारी खुदा की मखलूक है शाह साहब रहमतुल्लाह ने एक सिर और भेद को खोला है और उनके जवाब में अकल और नकल दोनों का इस्तेमाल किया है सबसे पहले शाह साहब रहमतुल्लाह ने नकल की बात करते हैं कि नकल में क्या आया है किताब सुन्नत में शाह साहब रहमतुल्लाह की थी और बहुत से मुकद्दस देवी की ये आदत होती है फिर सवाल पैदा करते हैं सवाल के बाद उसका अकल से जवाब देंगे फिर नकल से जवाब देंगे नकल से जवाब देंगे फिर अकल से जवाब देंगे सारे हिदाया हिदाया की बड़ी मशहूर किताब है रानी मामला वो अपनी हिदाया में सवाल पैदा करती हैं फिर इसका जवाब अकल से देते हैं अकल से देने के बाद वो अब नकल से ले आते हैं कि किताब उन्होंने दिया है इमाम काबी रहमतुल्लाह ने एक सवाल उठाते हैं फिर उसका जवाब वो नकलियात से देते 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 आखिर में वो कहते हैं कि ये नजर और इससे सोचने की बहुत अलग बात भी है वो बहुत अलग बात है अकल पे आ जाते हैं कि इंसानी अकल क्या कहती है शाह साहब रहमतुल्लाह ने पहले नकल पे आ गए हैं कि खुदा की किताब क्या कहती है फिर अकल पे आकर इस सवाल का जवाब दिया है कि आदमी इंसानी क्यों मुकल्लफ है बाकी चीजें क्यों मुकल्लफ नहीं है और शाह साहब रहमतुल्लाह ने इस उनवान के बाद इबादत जो शुरू फरमाई है तो वो कहते हैं कि قال الله تعالى अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इन्ना अरसलनाल अमानत अला السماوات والارض ये आयत वो लाई है कि इंसान को मुकल्लफ बनाने का राज क्या है अब इस आयत की तशरीह करनी है फिर उसके बाद चाहता है रहमतुल्लाह ने नकल की दलील पेश करेंगे अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के वाइसवें पारे में जहां खत्म हो रही है बिल्कुल तकरीबन उसके आखिर पे 72 नंबर आयत में इशारा फरमाया इन्ना अरसल अमानत अला السماوات والارض और हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर जमीन पर और जिबाल और पहाड़ों में पाबैना या मिलना उन्होंने इनकार कर दिया इस अमानत के उठाने से वाशफना मिलना और आजिज आ गए इसे वामला इंसान और इंसान ने इसे उठा दिया अमानत को इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला और इंसान बहुत नादान है इंसान बहुत ही अनपढ़ है कि यौसिब अल्लाह मुनाफिकीन इसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला अज़ाब देगा उनको जो मुनाफिक मरने बल मुनाफिकात जो मुनाफिक औरतें हैं बल मुशरिकीन मुशरिक मर्दों को बल मुशरिकात और मुशरिका औरतें हैं अल्लाह उनको भी अज़ाब देगा और इस अमानत को उठाने का नतीजा ये निकला कि यूसुफ अल्लाह वल मुमिनीन अल्लाह ईमान वालों की तौबा को कबूल करेगा मर्दों की बल मुमिनात और ईमान वाली औरतों की वकान अल्लाह वल रहीमा और अल्लाह ताला मगफिरत भी फरमाने वाला है और रहम भी करने वाला है इस आयत करीमा में दो तर्जुमे किए गए और लुगत के एतबार से और तफसीर के एतबार से दो मुद्र इमाम बैसाबी रहमतुल्लाह अलैह गज़ाली मुताफ़ीन में बहुत से बुजुर्ग जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया है उन्होंने इस आयत का तर्जुमा ऐसे किया है उसे देखिए इन्ना अरसलनाल अमानत अला समावात हमने अमानत को पेश किया अमानत का मुकल्लफ बनाया आसमानों को जमीन को और पहाड़ों फअबैना यहमिलनहा उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अमानत नहीं खाते हम अमानत नहीं लेते वशक्ना मिन्हा और आजिज आ गए इससे अमला इंसान और इंसान ने इसे उठा लिया इंसान ने अमानत ले एक तर्जमा दूसरा तर्जमा जो बिल्कुल ठीक है बिल्कुल तफसीर के मुताबिक है साहिब कामूस ने और प्योर लोगों ने और जनाब मौलाना की करम शाह साहब अल-अज़हरी जो थे उन्होंने अपनी तफसीर में उन्हें रास्ते बिल्कुल इसके बराबर तर्जुमा किया और वो भी बिल्कुल ठीक है वो तर्जुमा क्या है इन्ना अरदना लमानत अला समावाति वल अर्ज हमने अपनी अमानत को पेश किया आसमानों पर जमीन पर और जिबाल और पहाड़ों पर फअवैना हिया मिन्ना उन्होंने अमानत को उठाकर खयानत से इंकार कर उन्होंने कहा अमानत ले ली है बड़ी जिम्मेदारी है अपेना उन्होंने कहा अल्लाह हम हर किस खयानत नहीं करेंगे वह अशरफ नमीना आदेश आ गए वह हमला हल इंसान और इंसान ने क्या किया हमला हाथ से उठाया और खयानत कर दी इन्ना मुकाना दुश्मन जबरा और इंसान ने जुर्म किया और जाहिल है और इस खयानत के नतीजे में जो अब अल्लाह और मुनाफिकीन और मुनाफिकात वगैरह वगैरह पूरी आयत आ गई इसके नतीजे में जो मुशरिक मर्द और औरतें मुनाफिक मर्द और औरतें दीन अज़ाब दिया जाएगा और जो मोमिन मर्द और औरतें दीन अल्लाह उनकी तौबा को कबूल करेगा ये दो तर्जमे किए गए और दोनों बिल्कुल दुरुस्त एक तर्जमा ऐसे है जिसे देवबंद के काबिरीन ने रहमतुल्लाह बड़े बड़े हजरात ने तर्जी दी है वो भी ठीक है और लुगत के एतबार से इसी तरफ जो गए हैं बाद हजरात जो पीर साहिबान है इब्रेल भी मुक्तबा इब्रेल से तलाजत करते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है उन्होंने किसे लिखा है उन्होंने किसे लिखा है क्योंकि कुरान के अल्फाज से गुंजाइश दोनों की जब इल्मती नहीं होता नजर नसीर नहीं होती तो इतराजात पैदा होते उसका नुकसान ये होता है कि उस वक्त खड़े हो जाती है इसलिए जहां भी इख्तलाफात हों वहां आदमी मजीद तहकीक करे मजीद तहकीक करे आखिर पर पहुंच के पता चलता है कि वाकई दोनों ही दुरुस्त है ये भी सच कहता है वो भी सच कहता है ये भी दुरुस्त कहता है वो भी दुरुस्त कहता है आप इसको देखिए अब यहां पर दोनों चीजें फिट आ जाती हैं अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने पेश की अमानत ये बात बात की है कि अमानत है क्या चीज पेश किया आसमानों पर जमीन पर और पहाड़ों पर पावेना या मिना उन्होंने उठाने से इनकार कर दिया उन्होंने जो अमानत देखी अगला जुमला वशफ नमी आज डर गए उन्होंने कहा रब ये जो अमानत है इतनी बड़ी चीज है अरब हम नहीं उठा कोई इस पर गड़बड़ हो जाए अमानत से इधर इधर समझ लीजिए इतात मुराद है खुदा खुदा की फरमाबरदार कहता ने आसमान से पूछा तो मेरे फरमाबरदार रहोगे जमीन से पूछा पहाड़ों से पूछा उन्होंने कहा रब हम पर ये अमानत पेश ना कर जिस काम के लगा के हम करते रहेंगे और ये जो बाकी तकलीफ है ये कोई और करे शरिया कामात किसी और पर आए वहां इंसान इंसान ने कहा अल्लाह अजाब और सवाब की जो तकलीफ देनी है मुझे दे दे मैं इसके अजाब भी पाऊं सवाब भी पाऊं जो भी होगा देखा जाएगा इंसान ने अपना अंदर इस बुद्धि में दे जिंदा तकीबा कहता ने फरमाया हमने पेश किए मानत आसमानों जमीनों और जमीन और पहाड़ों पर फअवैन हिया मिन्ना उन्होंने अमानत को लेकर इनकार कर दिया अमानत उठा ली हमारा कसम उठाना हामिला आप उनको इसीलिए कहते हैं कि वो अपने जिम्मे तक लेती है उठा लेती है बिल्कुल इसी तरह जामिलना उन्होंने उठा दिया अमानत के बोझ को पहाड़ों ने भी आसमान ने भी जमीन ने भी जब उठा लिया तो फिर क्या हुआ वर्ष अपना में था और वो फिर आज ही आगे उन्होंने कहा अल्लाह तेरी अमानत है हम डरते हैं खुदा कभी खयानत नहीं करेंगे अल्लाह ने सूरज को लगा दिया चलता रहे सूरज चलता रहा पहाड़ों को जमा दिया जमे रहो जमे रहे अल्लाह ने आसमान ऊपर खड़ा कर दिया खड़ा रहे खड़ा रहे जमीन को नीचे जामिल कर दिया अल्लाह कहता है जमीन को हर कर कर नजर आ जाता है सब ने खुदा की बात की वहां इंसान और इंसान ने भी इस अमानत को उठा लिया कहना मैं इतात करूंगा लेकिन किया क्या उसने उसने खयानत कर दी इतना मुबाना जरूर बोला तो न आसमान जालिम और जाहिल बने न जमीन जालिम और जाहिल बनी न ही पहाड़ जालिम और जाहिल बने बना तो इंसान बना और इसका नतीजा ये निकला कि जो उसने बहुत मुनाफिकीन और मुनाफिकात अल्लाह अजाब देगा मुनाफिक मर्दों को औरतों को और इन इनकी बर्बादता को भूल सका दोनों तर्जुमे एक तर्जुमे में पिछली बात ने रख कर दूसरी जो खुली है दूसरी जो बात खुलने की है और समझने की है ये जो नाम आया है ना इन्ना मुकाना जरूर जो खुला इंसान जाहिर हो जाहिर है नियत से अल्लाह उन मुनाफिकिन ताकि लगाला कि ताके कलम जो है ना इब्रो की थोड़ी पे और नीचे अजाब से मुनाफिक मर्दों और औरतों ये जो नाम आया है यहां ये किस लिए आया नाम अरबी में 15 से ज्यादा मानी में इस्तेमाल होता है इसलिए कुरान पाक का तर्जुमा करना जान को बचीना आ जाए आदमी को अगर तर्जुमा करने बैठ जाए हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा कर गए और वो भी इस तरह से कि वो अकबरी मस्जिद जो आप दरियाफ्त हुई है एडवर्ड पार्क में जहां भी एडवर्ड का पुतला लगा हुआ है उसके बिल्कुल सामने जो है हमने देखा था एक जगह को हम समझ गए कि यहां ये मस्जिद होगी वहां पैदल रास्ता है लिखा है किताबों में कि कितने कदम पे वहां से थी उतने कदम पे चल के देखा लेकिन जब 1857 की जगह आजादी हुई तो अंग्रेजों ने सब चीजों में मिट्टी डलवा दी और जमीन में दस थी हमारे मुसलमान वजीर आ गए हिंदुस्तान और उन्होंने हुकूमत हिंद से कहा कि जितने भी पुराने खंडरात हैं इनकी तलाश की जाए मुसलमान हिंदू सिख जितनी भी यादगारें इनको निकाला जाए ताकि हमारा कौमी विरसा महफूज रहे तो ठीक उस जगह को उन्होंने खुदाई की और वहां अकबरी मस्जिद निकला ये वो अकबरी मस्जिद है जिसको मालूम नहीं अब कब तक वो साफ करेंगे क्या क्या चीजें निकलती हैं ये वो मस्जिद है जहां शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह ने कई आज बैठ के कुरान पाक का तर्जुमा किया और जिस दीवार पर टेप लगा के बैठते थे वो दीवार क्या पड़ गई इतनी मुद्दत तक बैठ के कुरान पाक का तर्जुमा ही करते रहे और कोई काम नहीं जो पढ़ाते थे भारी जी वगैरह वो अलग बात है लेकिन उन्होंने उस मस्जिद में बैठ के काम किया और किया क्या अपने भाई अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह के पास गए और कहा भाई मैंने आपने देखा है बड़े भाई है हजरत सच क्या हजरत मैंने आपने देखा है कि जिब्रील अमीन कुरान रूप में लेके नाजिल तो उन्होंने कहा भैया मेरी तो खत्म हो गई कुरान नाजिल हो चुका इसका मतलब यह है कि आप कुरान पाक की कोई ऐसी खिदमत करेंगे कि जब तक कुरान बाकी है आपकी खिदमत भी बाकी है कुछ दिन के बाद हजरत आए और अर्ज किया कि भाई अगर आप दो चीजों का वादा फरमाने साथ में दो जोड़े कपड़े मुझे दे दिया करें सिले पे और दो वक्त का खाना बस तो जैसे हमारे बाबा शाह मुल्ला रहमतुल्लाह ने फारसी में तर्जुमा किया है अब जमाना बदल गया है मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूँ जब साहब रहमतुल्लाह ने भाई मेरे पास जो कुछ है ये आप ही का आया अल्लाह करें शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बाकी जिंदगी वहां मस्जिद में बैठ के गुजार दी हत्ता के 1205 में ये तर्जुमा मुकम्मल हुआ क्योंकि एक जमाने की जुबान बदल गई आज दुनिया में कितने करोड़ों अरबों मुसलमान हैं और कितने ही अरबी नाम कितने जानते हैं एक आदमी को तौफीक नहीं है जो ये समझे कि अब जुबान और बदल गई हमारी अगली नस्लें अंग्रेजी पढ़ने लग गई उर्दू में पढ़नी नहीं आती और कोई ऐसा नहीं है जो कुरान पाक की तर्जुमा से चलो इतना मुश्किल हो जाता है तीन इंग्लिश में लिखते आज कुर्तबी 20 जिल्दों में है मानी कई जिल्दों में है तस्वीर 5-5 जिल्दों में है पूरी दुनिया में एक कुरान पाक की तस्वीर ऐसी असर नहीं है जो 10-15-20 जिल्दों में हो तफसीर से लिखी हुई हो ताकि हम अपनी उन नस्लों को जो यूरोप अमरीका ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में है उस इंग्लिश की तस्वीर भेज सकें कि बच्चों ये पढ़ो और हत्या के अब हमारी अपनी सोसाइटी में इतने बड़े लिखे बच्चे आज जवान हो गए हैं वो कहते हैं सर इंग्लिश में कोई कुरान दे दें इंग्लिश में तस्वीर दे दें हमें ये हो रही है इतने गाफिल हो गए मुसलमान कि कुरान पाक का सबसे पहला इंग्लिश तर्जुमा जॉर्ज स्टैनली किया और जॉर्ज स्टैनली ने 18वीं सदी के आखिर पर किया कोई हाई का बड़ा फासिल उसने कहा हम मुसलमान कैसे क्या हैं हमारी जिन जिन जंगें और लड़ाइयां हैं इसको सोचो भी तो सही नवाब से राजी दौला के साथ कलाम की जंग हुई लंदन में आप चले जाए म्यूजियम में अब तक वहां लिखा हुआ है उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला की चीजें रखी हुई है और उसके साथ इंग्लिश में उन्होंने उसकी जो हिस्ट्री बयान किया उसमें लिखा हुआ है हमने पढ़ा उन्होंने लिखा है कि अगर फिलासफी की जब अंग्रेज आ जाते हिंदुस्तान पे हमारा कब्जा बाकी ना रहता हिंदुस्तान हाथ से निकल जाता प्लास्टिक की जंग ने और प्लांट लाने हमें हिंदुस्तान दिला दिया अंग्रेज आए तब से छा गए 18वीं सदी के आगाज से ही चीजें शुरू हो गई थी और अंग्रेजों के छाने के साथ साथ मुसलमानों जब तरद्दुद पड़ा तो उन्होंने सोचा कि आपस की मुकद्दस किताब कैसी क्या है ये भी तो तर्जमा करो ना तर्जमा भी मुसलमान ने नहीं किया आकर जॉर्ज टेल ने खुद ही कुरान पाक का तर्जमा करके ईसाइयों को बताया कि मुसलमान की किताब क्या कहती है जाहिर है कि वो दीन के बाद की चीजें तो नहीं जानता था इसलिए बहुत से तर्जमे में इसकी गलतियां भी हैं अब मुसलमानों में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहे कि मैं 20-25 जिल्दों में कुरान की कोई आसान तफसीर लिख दूं हम अपनी नस्लों को बचा लें कम से कम पढ़े लिखे कुरान पाक पढ़ेंगे चीजें पढ़ें हम इसको नहीं सोचते हजरत ने फरमाया कि बाबा ने कुरान में बाप का फारसी में तर्जमा किया था हजरत शाफीला रहमतुल्लाह ने भाई मैं चाहता हूँ उर्दू हो गई जुबान में उर्दू में तर्जमा कर दूँ शाफीला जी साहब रहमतुल्लाह ने उर्दू में तर्जमा और अब قیامت تک کوئی آج بھی ایسا نہیں ہے جو اردو میں ترجمہ کرے اور شاہ عبد الغالب صاحب رحمت اللہ علیہ کا موقع آج تک تو کوئی نہیں آیا اتنے متعدد ترجمے ہوئے جو بصری بریلوی اہل حدیث شیعہ سب اللہ نے اپنے اپنے قرآن پاک کے ترجمے کیے ہیں ماشاء اللہ اور ایک اچھا ترجمہ بھی کیا ہے لیکن ہر ایک کے سامنے شاہ عبد الغالب کا شرف الدین صاحب کا ترجمہ آیا رحمہ اللہ کہ حضرت نے کیا نقش استعمال کیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں اس سے کیا بنتا ہے پھر جا کر ترجمے ہوئے ان حضرات کے یہاں پر پہنچ کے نا اس آیت میں جو خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اس نام کا ترجمہ کیا کیا ہے نام عربی زبان میں 15 سے زیادہ معنی استعمال ہوتا ہے اب اس کی اردو سے بھی تعلق کیے اس پہ بات کر کبھی کبھی غرض کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک دوست دوسرے سے کہتا ہے یہ کپڑا لے لو تاکہ سردیوں میں ٹھنڈک سے بچنے کے لیے کام آئے تاکہ کپڑے کی غرض روایت میں آن کی استاد کہتا ہے کہ سیکھے کہ پڑھو تاکہ تم فیل نہ ہو جاؤ تو پڑھائی کی غرض بیان کی نا تاکہ تم فیل نہ ہو جاؤ سو جملے بنانے آپ اردو میں بیٹے کے پنکھا لگا دیا ہے تاکہ آپ کو مچھر نہ کاٹے تو پنکھے کی ہوا کی غرض یہ ہے کہ مچھر اڑ جائے بالکل یہی الفاظ ہے لیکن آپ دیکھیے مفہوم کتنا بدل گیا کہتا ہے یہ کپڑا لے لو دو دوست جا رہے ہیں دکان میں کپڑا ہے وہ کہتا ہے یہ کپڑا لے لو وہ کہتا ہے ہاں تاکہ دکاندار شام کو کہے چور یہاں کون تھا یعنی اس کپڑے کے اٹھانے کا انجام چوری نکلے گا اس سے مذاق کر رہا ہے ایک سرجن ہے وہ کہتا ہے اس سب کو کاٹ دو دوسرا کہتا ہے ہاں تاکہ میں فیل ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ اس سرجری کو کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا تو فیل ہو جاؤ تو اگر آپ سوچیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ تاکہ قلم ایک ہی ہے وہ کہتا ہے تاکہ تمہیں مچھر نہ کاٹے اور یہ کہتا ہے تاکہ آخر میں فیل ہو جاؤ تو ایک جگہ وہ ون کے لیے استعمال ہو رہا ہے تاکہ سردی میں تم بچ سکو ٹھنڈک نہ لگ جائے تمہیں تاکہ پنکھا چلتا رہے تو تمہیں مچھر نہ کاٹے اور ایک جگہ وہ انجام کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ انجام کیا ہوگا یہ جو نام ہے اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں انہم کانا ظلوماً جہولا انسان ظالم اور جائز نکلا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں منافق عورتوں کو مشرک مردوں مشرک عورتوں کو جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کام غرض پر مبنی ہوتے ہیں اور اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ غرض کے لیے کام کرے کوئی یہ اللہ نے مخلوق پیدا کی غرض ہے خدا کی عبادت کرے غرض اس لیے ہے کہ اللہ کی بادشاہی چھوٹ جائے گی خدا کی خدائی میں فرق آ جائے گا معاذ اللہ صلی اللہ اللہ کوئی کام غرض سے نہیں کرتا اس کی راہ بہت بلند و بالا ہے کہ وہ غرض سے کام کرے اسی لیے معروف بدنی کے بالکل پہلے دل کے آغاز کی جگہ فرماتے ہیں من نہ کرتم فل فاسو دے گنا मैंने लोगों को अल्लाह ने कहा मैंने लोगों को मुसा इसलिए पैदा नहीं किया कि लोग मेरे कोई काम आएंगे बल्कि काबर बंदगान जुड़े कुनम हमने तो इसलिए पैदा किया कि हम अपनी बादशाहत का इजहार करें शहंशाहियत का इजहार करें कि हम जब शहंशाह को देखोगे तो ये पता चले हम कितने मौत करने वाले हैं कितना बिखरने वाले मन कर संकल आतू रे गुना बल्कि काबर बंदगान जुड़े गुना हमने इसलिए पैदा किया कि लोग देखें हम कैसे बादशाह अगर सिर्फ ये करे लियो उसने बदलाव मुनाफिकीन ताकि पूरा आसाम से मुनाफिक बदलो हो तो इसका मतलब है कि उस आदमी ने ये तर्जमा कर दिया कि अल्लाह को घर अल्लाह को घर आदमी ये कह सकता अल्लाह को अल्लाह इसलिए नाम पे यहाँ तर्जमा ये हुआ इन्ना मुकाना लिलूहन जेवला इंसान जालिम और जाहिल है लियो उसने बदलाव मुनाफिकीन इस जुल्म और जहालत का अंजाम ये निकला लियो उसने बदलाव इस जुल्म और जहालत का अंजाम ये निकला कि अल्लाह अजाब देगा मुनाफिक फर्दों और मुनाफिक औरतों को मुशरिक फर्दों और औरतों को और अल्लाह कबूल फरमाएगा मोमिन फर्दों और औरतों की तो ये जो नाम है यहाँ पर ताकि घर के लिए नहीं आया तर्जुमे में ये आया है इसलिए ताकि अल्लाह अंजाम बताए कि देखो इस जुल्म और जहालत का अंजाम क्या है ये तो दो बातें हुई तर्जुमे हमने अमानत पेश की आसमानों पर ये अमानत है क्या बल्कि इससे भी पहले एक और वो बहस ये है कि वाकया हुआ कहाँ है अल्लाह ने अमानत पेश की आसमान पे जमीन पे पहाड़ पे हुआ कहाँ है कुछ मुफस्सिरीन सिरे से इसका इंकार करते हैं वो कहते हैं ये वाकया नहीं हुआ इमाम बैजाबी का रुझान इस तरफ है इमाम नसफी रहमतुल्लाह का रुझान इस तरफ है इसलिए कुरान पाक की जब कोई अहम तस्दीक करे तो पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए सुनना चाहिए तहकीक करनी चाहिए कि मुमकिन है ये बात कह रहा है किसी ने लिखी हो आदमी पहले बता दे दे कि सब जहालत है ऐसे है ऐसे ऐसे है बाद में दस किताबों से निकला है उसमें करना क्या है फिर रजू की तो तौफीक होती फिर आदमी ये कहते हैं लिखाता है ना जरा कि यार मुझसे गलती हो गई रजू नहीं करता ये बड़ी अजमत की बात एक आदमी कोई बात बयान कर दे और बाद में गलती निकल आए कोई छोटा हिस्सा है समझा दे आदमी रजू करता इसलिए कि आदमी मासूमियत का दावा नहीं कर सकता मासूम आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके बाप कौन है हर आदमी से गलती हो जाती है और इससे ही हो गए तो बहुत मरतबा हो जाती है इमाम बैजाबी और नसफी रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह इस तरह के वो कहते हैं ये वाकया कि पेश नहीं आया कि अल्लाह ने अमानत कोई चीज थी जो आसमानों जमीनों और पहाड़ों को दी और कहा ये कर दो उनके कर दो ये वाकया भी पेश नहीं आया बल्कि अल्लाह ने अल्लाह तआला ने इसको फर्ज किया है कि फर्ज कर लो अगर ऐसे होता कि हम अपनी अमानत पेश करते आसमानों पर जमीनों पर जमीन पर पहाड़ों पर और वो इनकार कर देते और ना उठा सकते और इंसान उठा देता तो यूं 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 हो जाता वो कहती है ऐसा वाकया पेश नहीं जब ये तस्दीक कर ली जाए तो बहुत से सवालों से आदमी बच जाता है कि जितने लोग अकल को ज्यादा गालिब रखते हैं ना वो कहते हैं वाकया कहाँ पेश आया है कायनात में आदमी कहता है कि नहीं आया होगा मुझे अब क्या पता इसलिए मुस्तरीन से एक तबका बहते चला गया श्याम लिंदा रहमतुल्लाह ने इसके आगे चल के बहस की इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने वहां फरमाया एक बात और ख्याल में वो मिसाल आपको देती है इसकी आदत है ये जो नाम है गर्ज के लिए और ये जो नाम है अंजाम बताने के लिए सूरह कसस के आगाज में इसकी बड़ी अच्छी मिसाल आई है अल्लाह ताला से मूसा अलैहि सलाम और सलाम का जिक्र करते हैं अल्लाह फरमाते हैं यूं यूं हुआ मूसा अलैहि सलाम और सलाम के बाद और खुदा फरमाता है कि हम मूसा और फिरौन के हिस्सा आपके सामने ताकत नाजिल कर रहे हैं और फिरौन जो था इस जमीन में बड़ा सर उठा लिया और इसने क्या किया कि मुल्क में एक जमात को कमजोर कर दिया और उनके लड़कों को दबा कर देता था उनकी औरतों को जिंदा रखता था और ये बड़े फिरौन के मानने वाले बहुत बताते हैं जिंदगी में जाते हैं और हमने चाहा कि कुरानी का दर्द में हमने चाहा कि ऊपर एहसान करिए जिंदगी में कमजोर कर दिए गए और हमने चाहा इन कमजोर लोगों को हुकूमत मिलाकर इमामत के हवाले करें और हमने चाहा कि फिरौन तबाह हो जाए और जो कुछ छोड़ कर जाए उसके वारिस के लोग बने और हमने चाहा कि जमीन पर हुकूमत अंदर की जाए उन लोगों को जिनको फिरौन जैसे जालिम ने मजदूर कर दिया था और हम फिरौन को हामान को दोनों के जलजकर से तो दिखाना चाहते थे कि जिस चीज से तुम डरते हो ना अपनी सल्तनत के जवाब से और इस चीज से कि जिनको आज हम दबा रहे हैं कल को यही नहीं हुकूमत में ना आ जाए जो तुम डर रहे हो तुम्हारे डर को सच्चा करके दिखाएंगे तो किया हमने क्या हमने मूसा अलैहिस्सलाम की मां के दिल में बात डाली जब मूसा पैदा हुआ हमने कहा मां को कुरान का इस्तेमाल करता है वो वही ना या मूसा मूसा की मां की तरफ वही वही किसे आती है अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ और वो वही जिसमें कोई हुक्म ना हो अल्लाह दिल में डाल देगी कि ये करो ये हो जाता है ये सिर्फ सारे सलाम की वादा के साथ भी हुआ मरियम के साथ भी हुआ अरे सलाम शायद की मक्की के लिए अल्लाह ने इस्तेमाल किया है अल्लाह फरमाते हैं कि वो बाल रब्बू बैलनाल और तेरे परवरदिगार ने शायद की जो मक्की है इसकी तरफ भेजी थी जन्नत के दिल में बात डाली यदि तक भी मेरे जीवाले को यूदा पहाड़ों में अपने घर बनाया कर और हमने सुखी के दिन से ये बात डाली शायद की मक्की के कि देख निजाम ने हमने जो ये रास्ते मुकर्र कर दिए हैं बस सुखी तुमको डर पे कर बुलाना रब ने जो तेरे लिए रास्ते हवा में बनाए हैं इन पे पूरा कर तुम अपनी बिल्कुल जिस तमारा फिर हमने शायद की मक्की को वही की और हमने कहा रब चिंता कर हर किस्म के टुकड़ों से जो भी तुझे मिल जाए तुम्हारा उसे यहाँ फरमाया वो ठीक ना आया ताकि मां की दिल में ये बात आनी गई हमने कहा कि अपने बच्चे को दूध पिला फिर जाके ताले और जब तुम्हें डर लगे कि फिरौन के फौजी से पकड़ लेंगे फल भी नहीं मिल जा तो मौजों के हवाले कर देना अजीब बात है फिरौन के फौजी पकड़ लेते तो दो चार घंटे बाद ही जमा कर देना मां से कुछ ना कुछ तवक्का देते मां को और इधर मौजों के हवाले करते एक लम्हे में यकीनन डूब के मर जाए ये बातें हम सोच सकते हैं जिससे बचाना है तो क्या परवाह और अकेले भी हम अल्लाह ने कहा उनका मौजों के हवाले कर दे अल्लाह का काफी और आता अल्लाह नहीं ना डरना बिल्कुल दुख दुख नहीं होना चाहिए इन्ना आतू इलैके हम तेरे बेटे को तेरे पास वापिस ले आएंगे और जाएंगे तो बिल्कुल जमीन और तुम जानती हो हम इसे रिसालत देंगे फल से खाता हुआ आदत फिरौन फिरौन के घर वालों ने इसे उठा लिया फिरौन के घर वालों ने उठा लिया इस बच्चे को अब ये आ गया नाम ले ये पूरा लहू मालूम को बाजना ये नाम आ गया ना इस तकदीमा में ये करें ताकि ये बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम इनके लिए दुश्मन बने और तकलीफ का सबब बन जाए तो ये तर्जमा ठीक बैठता ही नहीं कौन आसिया और कौन माँ बच्चे किसी को उठाती है कि बड़ा हो उसका दुश्मन बन जाएगा और तकलीफ में देगा कौन ऐसे करता है इसकी तर्जमा यहाँ ये होगा और उसका हुआ फिरौन फिरौन किए खानदान वालों ने उसे उठा लिया लहुमालूबन नतीजा उसका ये निकला कि उठाकर जिंदगी बचा दी ना आखिर में फिरौन के उनकी रिश्तगी होगी वह हजाना उनके लिए तकलीफ का बाई देखा इसलिए कुरान पाक का तर्जमा कई जगह पर आता है और वहां पहुंच के बड़ी मुश्किल पेश आती है अगर इंसान इन बारीकियों और दिक्कतों पर गौर न करे अपने उस बात की तरफ वो क्या थी कि लगाना ने फरमाया हमने अपनी जमान जमानत पेश की आसमानों पर पहाड़ों पर और जमीन पर मुहजरीन ने गिरोह इस तरफ गया कि जिसका कहीं कोई
और वो कहती हैं इंसान सदजियों उस रायकशिप से समझो अल्लाह जैसे कहता है लो अंदर ना हाजिर कुरान आला जबरिन और अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते तो तुम देखते अल्लाह के फौज से वो टुकड़े टुकड़े हो जाता फट जाता पहाड़ आज शाम को तो प्रेम से किया रिंदा पूरा के रोग और दबदबे से ये पहाड़ इनका निगर छट हो जाता वो कहते हैं हुआ ही कभी है लेकिन अल्लाह ने कहा फर्ज करो ऐसे होगा इसी तरह यहाँ पर फर्जियत है कि फर्ज कर लो ऐसे हो जाएगी हम अपनी इमानत इस तरह पेश करें तो ये हो जाए ये हो जाए एक मुफस्सरीन की राय है दूसरी तरह की मुफस्सरीन भी है वो कहते हैं कि ये वाकया हुआ है और वाकया ये हुआ कि अल्लाह ताला ने किसी दौर में आसमानों और जमीन से कहा कि मेरी इताअत को कबूल करो अमानत ले लो अमानत की एक तफसीर ये की गई कि अल्लाह ने कहा इताअत को कबूल करो दूसरी तफसीर ये की गई कि अल्लाह ने कहा मेरी खिलाफत को कबूल करो तीसरी तफसीर दुनिया ने की ये मोहब्बत को कबूल करो हर एक अपना अपना गांव है जिनको खिलाफत में असर नजर आई और जिन्होंने इंसानी खिलाफत को बहुत अधिक निशान समझा उनका है आमकार खिलाफत जिन पर तबुक का गलबा था उन्होंने कहा इससे मुराद मोहब्बत है अल्लाह ने कहा मेरी मोहब्बत ले लो और कोई नजर आते और तस्वीर कर ली तुम भी बैठे हुए थे खानता में उलमा भी बैठे हुए थे तो एक आदमी कहता है मुझे कुरान की तस्वीर की तलाश हुई तो अल्लाह ने सुना कि शजरत अल मलऊन है तो फिर कुरान और वो दरख्त जिसपे अल्लाह ने लानत की है कुरान में आया नहीं उसने कहा वो शजरत अल मलऊन है कौन सा किस दरख्त को अल्लाह ने लानत की है तो तालिबान कहता है मैं बगदाद में घूमता रहा तो एक जगह गया बड़े आलिम दीन थे उनसे मैंने पूछा दो तम लाए हुए थे सताए हुए थे बगदाद के लोगों से तो कहने लगे ये लानत वाला जरा कोई है जो हमारा बाप का जन्नत से निकला आदम अलैहिस्सलाम ने इसको पाया तो चुप हो गया वहां से उलमा का एक बच्चा बैठा हुआ था मैंने उससे पूछा कि फरिश्ता की लानत वाला जरा कौन सा है तो उन्होंने कहा वही शजरा है जकूम जन्नत में झुकेगा जन्नती खाएंगे पिएंगे उसको वही आप हकीकत से तस्दीक दिए गए कहने का मुझे इत्मीनान हुआ मैं अपने मोहल्ले में गुजर रहा था तो खानकाह में सूफी बैठे हुए थे मैंने कहा सूफियों से भी पूछूं कि शजरा मजमूना कुरान में कौन सा है तो सूफियों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा फलान जो होता है ना ये शजरा मजमूना है फिलानत हो मैंने कहा इससे क्या दिलान हो गया लेकिन इसलिए कि उसके बाद खाना जो कुछ नहीं होता सलाल आप कैसे करते हैं ना उसे कहा तो खाना जो कुछ नहीं होता सलाल तो जरा से कि सारा खाना पीने ही खत्म हो गया तो लोगों पर गलबा भी कभी होता है किसी चीज का वो तस्वीर करते हैं अपनी इसके मुफसरीन इस तरफ गए वो कहते हैं इतना रोजा लमाना वाला समावाद अल्लाह ने खिलाफत दी मोहब्बत दी इताअत दी अब जो लोग इसकी इताअत से ताबीर करते हैं वो कहते हैं जमीन की इताअत की इताअत करती है आसमान के इताअत की इताअत करते हैं और पहाड़ के अंदर ही इताअत करते हैं इसलिए कि आप देखें इन सब को अल्लाह ताला ने जो जो भी जो हैसियत है सब पूरा ईमान पहाड़ है सबसे दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे इतने जबरदस्त पढ़ने वाले थे इसकी तरफ इशारा हजरत ज़बूर अलैहिस्सलाम की जो सहायक है उनमें भी आया ज़बूर अलैहिस्सलाम ज़बूर जनाज़ी की के इससे दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बूर सारी की सारी कुरान की हमदो सना के मुस्तमे नज़्मे हैं उनके मुस्तमे नज़्मे अब तक हैं उन सब में अल्लाह की तारीफ है और यही बात कुरान भी कहता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब दाऊद हमारी तारीफ बयान करता था ज़बूर पढ़ता था कितना जल्दी पढ़ लेते थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नौकर से कहते थे कि मेरे घोड़े पे काठी तीन तक दो तो उनका घोड़ा जितनी देर में वो करता था बैठते ही देर से ज़बूर पढ़ लेते थे इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उनके वक्त में बरकती थी जो लोग वक्त की काम करते हैं मुताला इल्म इबादत वो थोड़े वक्त में ज्यादा इबादत कर लेते हैं और ये हो जाता है हम अरे आपके लिए एक रात के कुरान पढ़ना बड़ा मुश्किल है लेकिन जो लोग टाइम की गहराई में चले जाते हैं वे एक रात में दो दो दफा दस दस दफा कुरान पढ़ लेते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता कभी मोमिन सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि मैं कभी कभी कुरान पढ़ता हूँ घोड़े की रकाब पे पाँव रखता हूँ और दूसरी रकाब पे पाँव रखने तक पढ़ लेता हूँ ये हो जा रहा लोग इसलिए इतने नहीं मानते कि उन्हें टाइम की गहराई का इल्म नहीं है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही बुखारी की रिवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिस सुलेमान अलैहिस्सलाम सलाम शहजादे थे ना दाऊद जैसे बाप के बेटे इतनी बड़ी सल्तनत हुकूमत बादशाह थे शहजादे थे उन्होंने कहा कि मैं आज रात 99 औरतों के पास जाऊंगा ये 100 औरतों के पास जाऊंगा और अल्लाह ताला मुझे 100 बेटे देगा और मैं 100 के 100 बेटे फौज में ले जाऊंगा ताकि नाकिला में लड़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया किसी रिश्ते ने उनसे कहा कि आप इंशाअल्लाह भी कह दीजिए तो उन्होंने नहीं कहा शहजादे थे बादशाह थे नहीं कहा और उस रात में 100 औरतों के पास गए और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 99 औरतों से कुछ हुई नहीं एक औरत से एक बच्चा होने वाला था वो भी वारिसन हो गई बच्चा गिर गया था कि तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही बयान फरमा रहे हैं वहां लेकिन एक रात में एक फर्द के लिए जो मुमकिन कहते हैं यहां पहुंच के सारे फलासफा इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह और क्या वो कहते हैं टाइम की डेप्थ से जाके काम होते हैं इसलिए अगर कोई कहता है कि मैंने कुरान इतनी मरतबा पढ़ लिया या जिक्र इतनी मरतबा कर लिया एक बुजुर्ग एक तस्ती का दाना फेंकते थे और कहते थे कि इतनी मरतबा अल्लाह हो गया तो उसका मतलब एक मरतबा फरमाते थे 28,000 कभी कहते थे 24,000 मरतबा वो ठीक कहते थे टाइम के डेप्थ पे जाकर जब आदमी काम करता है फिर ऐसे काम होते हैं दाऊद अलैहि सलाम की जुमरा की पढ़ लेते और अल्लाह कहते हैं जब दाऊद मुंह पढ़ता था हमने कहा था जीवालो अपने ही माँ को बताइए हमने कहा पहाड़ो तुम दाऊद की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर जरूर पढ़ो और हमने परिंदों से भी कहा कि परिंदों दाऊद की आवाज में आवाज अपनी मिलाओ मेरी तारीफ के नारे बुलंद करो मेरी तारीफ पहाड़ों की गूंज के साथ करो ताकि हर तरफ मेरा नाम बुलंद पहाड़ों ने ना ईमान जमीन है अल्लाह ताला ने तो कुंडिया के कारण तो निकल जाए जमीन है मानी आसमान है अल्लाह ताला ने ना आसमान वक्त पहले ही मुस्तफा फिर वहां जब गर्क हुआ तो आसमान भी रोया इसका मतलब यह है कि मोमिन के मरने पे आसमान रोता है फिर कि आसमान जमीन पहाड़ की बात इबादत तो सब नहीं हदीस में आता है आसमान खुलता है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए तो जिब्रील अमीन ने दरवाजा खटखटाया अंदर से आवाज आई कौन सा जिब्रील सरकार पास कौन है उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलाए गए हैं या खुद आए हैं उन्होंने कहा बुलाए गए तो उस फरिश्ते ने आसमान का दरवाजा खोल दिया और कहा आप आना और बाद में आप बुलाए गए इनकार किस चीज से हुआ अगर ये सारी चीजें खुदा की माननी है और यकीनन माननी है तो फिर इनकार किस चीज से कुरान करीम ने लक्ष्यम प्रियम बहुला तुदरिकल बबर सूरज की मजान नहीं है कि अपने दायरे से निकल के चांद से जा कराए उसकी हिम्मत ही नहीं पर नजम व शजर यसदान और तुमने देखा है कि बेले और ये जो दरख्त हैं हमारे सामने सजदा करते हैं वलिंदा यसजुद और अल्लाह ही को सजदा करती है हर वो चीज जो आसमानों में है और जमीनों में है और लोगों तुम्हारे साये मुझे सजदा करते हैं हालांकि इंसान का साया क्या चीज है हमने कभी और नहीं कर कौन करता है हर वो रोटी में साया होते ही है अल्लाह ने कहा तुम्हारा साया हमें सजदा करता है अल्लाह ने कहा दरख्त में सजदा करते हैं चांद और सूरज में सजदा करते हैं खुद सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि सूरज जब अल्लाह के अर्श के ठीक नीचे पहुंचता है तो सजदा करता है वो और अल्लाह उसके सजदे को कबूल करता है और फिर अल्लाह कहता है चला जा आगे चलो वो आगे चला जाता है और आपने फरमाया आखिरी दिन जो आएगा उस दिन सूरज आएगा और अल्लाह कहेगा तेरा सजदा कबूल नहीं है एक ही सजदा है जो सूरज की करोड़ों अरबों साल की जिंदगी में खुदा कबूल नहीं करेगा सूरज दिखेगा कि अल्लाह क्या हुआ है अल्लाह ताला बनाएंगे वापिस लौटा चांद से आया है
और इस इंसान का मकारा वो पहला दिन होगा जब मगरिब से सूरज शुरू हो कुरान को भी बता सूरह इनाम की आदत की आयत आती है तो ये सारे खुदा की सिलसिला गुजार है इबादत गुजार है कि काम किस चीज से हुआ ये अल्लाह का